मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 17 अप्रैल 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं विपिन कुमार, आप मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हैं, प्रदीप कुमार सोनी, आप छपरा बिहार से हैं, शुभम जायसवाल, आप सोनकच्छ मध्य प्रदेश से हैं और सौम्या गर्ग, आप बरेली उत्तर प्रदेश से हैं। तो विपिन, प्रदीप, शुभम और सौम्या, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, और इसके बाद अब मैं आप सब की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं शुभांकर माजी और उनके दोस्त जगदीश दास को, जिन्होंने अभी वेस्ट बंगाल के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। शुभांकर और जगदीश, इसके लिए हम सबकी बहुत बहुत बधाइयां और भविष्य की सफलताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। मैं उन्होंने लिखा है कि वो इस डेली ऑडियो के कंटिन्यूअस लिसनर हैं और इससे एग्जामिनेशन में उन्हें बहुत मदद मिली है। तो मित्रों, अब आइए हम बात करते हैं न्यूज एनालिसिस की। आज के न्यूज एनालिसिस में के अंतर्गत मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा पाइका विद्रोह की और इसके बाद हम लोग एथिक्स पर बात करेंगे, जो पिछले मंडे में भी मैंने इस सवाल को थोड़ा सा उठाया था लेकिन वक्त की बहुत कमी होने की वजह से ये काम पूरा नहीं हो, पूरा क्या मतलब, एक तरीके से यूं कह लीजिए कि शुरू ही नहीं हो पाया था। तो आज मैं अपने वायदे को पूरा करना चाहूंगा। दोस्तों, जहां तक रेडियो न्यूज का सवाल है, अखबारों में भी आज आप लोगों ने देखा होगा, जो सबसे बड़ी खबर थी वो यही कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उड़ीसा में हो रही है और उड़ीसा में प्रधानमंत्री जी ने दो सबसे महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मैं सिविल सर्विस के हिसाब से ये कह रहा हूं, दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं ना, राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूं। पहली बात तो यह है दोस्तों कि उन्होंने मुस्लिम समाज के बारे में बात कही कि जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। आप देखते हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड में समान सिविल संहिता को लेकर के विवाद की स्थिति बनी हुई है, फिर लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक भी हुई, वो भी न्यूज में थी कि इन्होंने कहा है कि नहीं, ये जो तलाक और ये जो इस तरह की जो हमारी परंपराएं हैं, ये हमारे निजी कानून है और इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, उन्होंने एक अच्छी बात पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी की है कि उन्होंने कहा कि जो भी इसका गलत उपयोग कर रहे हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। और फिर उन्होंने कुछ अपना कोड ऑफ कंडक्ट भी रिलीज किया है, बताया है कि इस तरीके से तलाक की जो कार्यवाही है या जो प्रक्रिया है होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार में दिमाग में आया, तीन बार तलाक बोल दिया तो तलाक हो गया। ये खबर आपने सुनी है और प्रधानमंत्री जी ने इधर इशारा किया है। मित्रों, आप कुछ समय से देख रहे होंगे कि मुस्लिम समाज और खासकर जो मुस्लिम के जो महिला समाज है, उनमें एक अंदर ही अंदर आपको एक अलग किस्म की बेचैनी दिखाई दे रही होगी। कुछ संगठन मुस्लिम समाज में महिलाओं के असमानता से जुड़े हुए जो रीति रिवाज हैं उनके खिलाफ आंदोलन भी कर रहे हैं, लगातार आवाज भी उठा रहे हैं। और आपको यह भी मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी होनी है, शायद मई मिड में 10-11-12 मई के आसपास इसकी सुनवाई शुरू होगी। अभी यह मामला, तीन तलाक का जो मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट में है। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है तो केंद्र सरकार ने साफ साफ कही दिया है कि हम समान सिविल संहिता के पक्ष में हैं और चूंकि हमारा संविधान सभी को समान अधिकार देता है तो वो तीन तलाक का विरोध करती है, तीन तलाक के पक्ष में नहीं है। ये पहले मुस्लिम समाज, तो खासकर मुस्लिम महिला समाज है और जो विमेन एम्पावरमेंट है, आपके सिलेबस का बहुत बड़ा अनिवार्य हिस्सा है। हर साल आप उठा के देखिए जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर में दो तीन क्वेश्चन सीधे सीधे महिलाओं पर ही पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार मुस्लिम महिलाएं स्पेशली इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आप ले सकते हैं। दूसरी बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कही थी दोस्तों, जिसे रेडियो न्यूज में बहुत विस्तार के साथ नहीं लिया गया है और उसकी जरूरत भी नहीं होती क्योंकि हर न्यूज का अपना एक चरित्र होता है, वो है पाइका विद्रोह को लेकर, पाइका विद्रोह, इसको पाइक विद्रोह भी कहा जाता है। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे रेडियो न्यूज में यह बात थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे देश में जो अनुसूचित जनजातियों द्वारा 50 विद्रोह किए गए हैं, जिसे आप आंदोलन कह लीजिए, विद्रोह कह लीजिए, उनके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, कुछ योजना वगैरह ऐसी बनेंगी। मित्रों, फ्रीडम मूवमेंट आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिस्ट्री के अंतर्गत, उसमें मुझे लगता है कि अनुसूचित जनजाति विद्रोह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने यह बात उठाई है अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उठाई है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा उठाया जाना एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, राष्ट्रीय दायित्व बन जाता है। इस पर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आगे कार्रवाई करेगी या राज्य सरकार, उड़ीसा की राज्य सरकार क्या करेगी, वो बाद की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि यह विद्रोह बहुत वेल नोन नहीं है, आपको किताबों में भी बहुत कम पढ़ने को मिलेगा, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके दो पक्ष होंगे, पहला पक्ष तो यह है कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में अनुसूचित जनजाति विद्रोह का योगदान या उनके आंदोलन का योगदान, दूसरा इसका पक्ष हो सकता है कि ये जो पाइक विद्रोह है अपने आप में, इसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी, क्योंकि बहुत ही एनालिटिकल प्रश्न इससे बनता नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको पाइक का विद्रोह के बारे में बता दूं, क्योंकि शायद किताबों में बहुत ज्यादा आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, बेसिकली पाइका जो जात वहां की एक अनुसूचित जनजाति का समूह है, जो मूलतः ये कह लीजिए कि सैन्य प्रजाति है, सैन्य जाति है, मतलब ये शुरू से ही बहुत ही वैरियर रहे हैं, वीर रहे हैं, योद्धा रहे हैं, सेना के कामों से जुड़े रहे हैं, ये इस तरह का एक ग्रुप रहा है। 1817 में ये विद्रोह हुआ था, 1817, और वहां जो खुर्दा के जो राजा थे, खुर्दा के राजा उनके नेतृत्व में, बख्शी जगबंधु उनके नेतृत्व में वहां की ये जो पाइका जो जनजातियां हैं उन्होंने विद्रोह किया था, और उन्होंने अपने विद्रोह में जो जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी के जो देव हैं जगन्नाथपुरी, उनको अपने सिंबल के रूप में चुना था। हुआ यह था दोस्तों, इसके पीछे रीजन ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी 1600 में, तो 200 साल के बाद लगभग 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा पर अधिकार कर लिया, और इसके बाद जो खुर्दा के राजा थे उनको उसके पद से हटा दिया। चलिए, वहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन इसके बाद जैसा कि उस समय और भी दूसरे क्षेत्रों में आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा किया, ब्रिटिश कंपनी ने भी ऐसा किया, बाद में सरकार ने भी वैसा किया, उन्होंने क्या किया कि ये जो पाइका जो जाति थी, इनके पास एक जमीन होती थी जो जागीर कहलाती थी। जागीर का अर्थ वैसे तो हिंदी क्षेत्र में दूसरा है, लेकिन वहां जो उसका अर्थ था वो ये था कि जागीर की भूमि टैक्स फ्री होती थी, मतलब वो ये जो पाइका जो समूह के लोग हैं ये अपनी जमीन पर खेती करते थे, बदले में इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले तो इस परंपरा को ही खत्म कर दिया कि नहीं, अब इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो उनके ऊपर एक बोझ आ गया, आप कह लीजिए। इसके बाद फिर वही है कि टैक्स की दरें वो लगातार बढ़ाते रहे, जैसे दूसरे राज्यों दूसरी जगहों पर करते रहे, उनके टैक्स वसूल करने के लिए फिर जो अत्याचार होते हैं वो ऑलरेडी करते रहे। इन सबको चूंकि ये सैन्य थे तो इन ब्रिटिशर्स को लगा कि ये तो शक्तिशाली समूह है, तो उनको उस सारे कामों से हटा दिया गया, सेना के काम से और इस तरह के जो शक्ति पर आधारित काम है उन सब से हटा दिया गया। वहां की जो अपनी करेंसी होती थी उस करेंसी को खत्म कर दिया गया और कहा गया कि अब चांदी में भुगतान कीजिए। तो इस तरीके से जो वहां का ये जो समूह था पाई का समूह, उन पर जब बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने लगा तो उन्होंने फिर खुर्दा के राजा के नेतृत्व में यह विद्रोह किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है दोस्तों कि जो कंपनी के लोग थे उन्हें इसकी जानकारी जल्दी से मिल गई और इसको एकदम कुचल दिया गया, खत्म कर दिया गया, यह विद्रोह दबा दिया गया। बस सामान्य सी जानकारी पाइका विद्रोह के बारे में मित्रों इतनी ही है, बाकी आप डिटेल्स में और देख लीजिएगा, आपको किताबों में पढ़ने को मिल जाएगा। एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि अभी अगर उड़ीसा से कोई स्टूडेंट सिविल सर्विस के जो इंटरव्यूज चल रहे हैं अगर उसमें जा रहा हो तो उसे इस विद्रोह के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए, हो सकता है कि इस पर पूछ लिया जाए। इसके बाद एक जो खबर थी फ्रेंड्स वो तेलंगाना आरक्षण विधेयक को लेकर के थी, तो अब देखिए कि क्या होता है, क्योंकि और भी स्टेट इस तरह से पारित करते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि 50% से अधिक नहीं हो सकता है। तेलंगाना जो ने जो अभी मुस्लिम समुदाय को और दूसरे लोगों के लिए जो अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था की है उससे वो 60% से ऊपर चला गया है। तो अब देखते हैं मामला क्या होता है, तो वो कोई बड़ी न्यूज नहीं है, लेकिन एक सूचना के तौर पर आपको इस जानकारी मैं दे रहा हूं। मित्रों, अब मैं आता हूं एथिक्स के बारे में, जो आपके फोर्थ पेपर का है और जिस पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। असली में ये एक संकट है मित्रों मेरे सामने, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस आपको वीकली देता हूं उस पर भी बातचीत करने की गुंजाइश होती है, लेकिन चूंकि दूसरी प्रोमिनेंट चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, प्रायोरिटी में चूंकि उनको टॉप पर रखा जाना जरूरी है, अदरवाइज वो पुरानी पड़ जाएंगी, तो इस तरह की चर्चा करने के लिए अवसर नहीं मिल पाता है। ये मेरी अपनी सीमा है, मेरी अपनी मजबूरी है और मुझे यकीन है कि आप सब इसके लिए मुझे माफ करेंगे, लेकिन इनकी जगह पर भी जो दूसरी बातें आपसे मैं करता हूं वो किसी भी मायने में इनसे कम नहीं होती है। मुझे ये लगता है कि चाहे एथिक्स की बात हो या और जो दूसरी चीजें हैं, ये तो आपको किताबों में भी मिल जाएंगी, लेकिन जो न्यूज एनालिसिस है, न्यूज कैसे इंपॉर्टेंट है, किस एंगल से आपको पढ़ना है, ये आपको किताबों में भी नहीं मिलेंगे, मैगजीन में भी नहीं मिलेंगे, तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। इसलिए वो बातें मेरी प्रायोरिटीज में होती हैं और ये बातें फिर छूटती चली जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता चुका हूं, पिछले अंक में आपने देखा है कि एथिक्स का कितना बड़ा रोल आपके फोर्थ पेपर में है। सच पूछिए तो अगर एथिक्स को आप पूरे के पूरे हमारे जितने भी दूसरी जो आचरण संबंधी व्यवस्था है, जैसे आप वैल्यूज ले लीजिए, जिसमें आप कानून विधि को ले लीजिए, जिसमें आप मॉरेलिटी को ले लीजिए, जिसमें आप आचरण को ले लीजिए, जिसमें आप सत्यनिष्ठा को ले लीजिए, ये जितने भी चीजें हैं, जितने भी तत्व हैं, इनके केंद्र में अगर आप देखेंगे तो आपको नैतिकता दिखाई देगी, एथिक्स दिखाई देगा। इसीलिए जो एथिक्स का जो दायरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए हिंदी में ये शब्द है नीति, नैतिकता, नैतिक, और ये जो नैतिक शब्द है, नीति शास्त्र, एथिक्स का मतलब है नीति शास्त्र, ये जो नीति शब्द है ये नैतिकता से निकला है, नीति शब्द से निकला है, नीति से नैतिकता बना। नीति के बारे में आप सोच करके देखिए, राजा की जो नीति है वो राजनीति है, आचरण की जो नीति है वो आचार नीति है, धर्म की जो नीति है वो धर्म नीति है, अर्थशास्त्र की जो नीति है वो अर्थ नीति है। तो आपको दिखाई देगा कि हर क्षेत्र की अपनी नीति है। अब यहां तक बात होने लगी है कि हर व्यवसाय की अपनी अपनी नीति है, प्रोफेशनल एथिक्स, अगर डॉक्टर हैं तो उनकी अपनी नीतियां हैं, अगर नेता हैं तो उनकी अपनी नीतियां हैं, अर्थशास्त्री हैं उनकी अपनी नीतियां हैं, अगर आप सिविल सर्विस में हैं तो सिविल सर्विस के आप अलग से कंडक्ट रूल्स बनाए हुए हैं तो उनकी अलग नीतियां हैं। आप देख रहे हैं, तो जैसे जैसे हम प्रोफेशंस में डिवाइड करते जाते हैं, जितने भी ब्रांचेस आप देखेंगे उन सब में फिर आपको एक नीति शास्त्र दिखाई देगा, नैतिकता दिखाई देगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जो नैतिकता है वो हमारे सामूहिक रूप से हमारे समाज और व्यक्ति के रूप से व्यक्तिगत, मैं खुद व्यक्ति, इन दोनों के जीवन के केंद्र में है, केंद्र में है नीति, चाहे वो व्यक्ति हो या समाज हो। देखिए समाज का बड़ा ही रूप राष्ट्र होता है और राष्ट्र, कई राष्ट्र मिलकर के विश्व बना लेते हैं, है ना। तो अगर समाज आप कह देते हैं तो आप राष्ट्र को भी एक बहुत बड़ा समाज कह सकते हैं, है ना, और पूरे के पूरे दुनिया को आप विश्व समाज भी कह सकते हैं, कुछ लोग ये शब्द प्रयोग में लाते भी हैं। तो जो नीति है, फिर अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या है। मैं इसके विस्तृत रूप को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं फ्रेंड्स, ताकि आप जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप इसे विस्तार के साथ ही देख सकें। पर्यावरण में भी नैतिकता आपको दिखाई देगी, प्रश्न पूछे गए, मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं। अब आप देखिए कि अब नीति को फिर आप कहेंगे क्या, नैतिकता फिर क्या हुई, नीति शास्त्र फिर क्या हुआ। एक व्यक्ति है जो बहुत ही उज्जट किस्म का है, जो कानून को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, समाज को नहीं मानता, लेकिन व्यक्ति तो है, वो एक व्यक्ति है। दूसरा एक व्यक्ति है जो इन सभी को मानता है, इन सभी को मानता है। तो दोनों में क्या फर्क हुआ? सामान्य भाषा में जो पहला व्यक्ति है जो इन सब चीजों को नहीं मानता, हम उसे एक असभ्य उज्जड किस्म का व्यक्ति कह देते हैं, थोड़ी से अच्छी भाषा में उसे अशिष्ट व्यक्ति कह देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन सब चीजों को मानता है, जो बहुत ही जिसका मैनर्स बहुत अच्छे हैं, व्यवहार बहुत अच्छा है, उसे आप क्या कहते हैं? ये सभ्य व्यक्ति है, ये संस्कार वाला व्यक्ति है, ये सुसंस्कृत व्यक्ति है, ये शिष्ट व्यक्ति है, शिष्ट व्यक्ति है। इसका मतलब हुआ कि जो शिष्ट और अशिष्ट, अगर हम ये दो अलग अलग रूप मान लें, तो क्या चीज शिष्ट है, कौन सी चीज अशिष्ट है? कौन सी चीज अशिष्ट है वो तो नैतिकता के अगेंस्ट हो गई, उनको तो हम लेकर के नहीं चलेंगे, लेकिन वे तत्व, वे एलिमेंट्स, हमारे आचरण के वे सिद्धांत जो व्यक्ति को शिष्ट बनाते हैं, उन्हें हम नैतिकता मानते हैं, उन्हें हम नीति शास्त्र का हिस्सा मानकर चलते हैं। और इसका निर्धारण कैसे होता है? अब नीति शास्त्र का निर्धारण होता कैसे, यानी कि नैतिकता का निर्धारण होगा क्या, कैसे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, नैतिकता का निर्धारण करने के लिए जो तत्व है वह है कि मनुष्य की जिंदगी के लिए क्या चीज सर्वोत्तम है। उत्तम है नहीं, सर्वोत्तम है। और याद रखिए कि जब हम मनुष्य की जिंदगी की बात कर रहे हैं तो एक मनुष्य की जिंदगी की बात नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण मनुष्य की जिंदगी की बात कर रहे हैं, संपूर्ण समाज की बात कर रहे हैं। तो वहां हम ऐसे तत्वों को लेकर के चलते हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोगों का भला होता हो, उसे हम नीति शास्त्र के अंतर्गत हम ले लेते हैं। जैसे दोस्तों, अब एक उदाहरण दें कि आपने यदि किसी से कर्जा लिया है, ऋण लिया है, तो वह आपको चुकाना चाहिए। ये चुकाना चाहिए, ये जो चाहिए शब्द है, ये नैतिकता का हिस्सा है, चुकाना चाहिए। अब आप इसको किसानों से जोड़ करके देख लीजिए, किसानों की जो ऋण माफी है उसे जोड़ करके इस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उसे एनालाइज करूं। अगर आप चाहेंगे तो फिर हम एक लेक्चर इस पर रख सकते हैं। ऋण चुकाना चाहिए, ये नैतिकता है। जो ऋण नहीं चुकाएगा वह दंड का भागी होगा, ये विधि है, कानून है। नैतिकता से ही निकला है, देखिए, नैतिकता से ही निकला। अब नैतिकता की रक्षा कौन करेगा? नैतिकता की रक्षा कानून करेगी। तो वहां आपको कानून हो गया। जो ऋण नहीं चुकाएगा वह नरक में जाएगा, या जो इस जन्म में ऋण नहीं चुकाएगा उसे अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। इस तरह की भी व्यवस्थाएं की गई है, यहां भी ऋण है। अब उस पर दबाव डालने के लिए, नैतिकता का पालन हो इस बात का दबाव डालने के लिए, उसे किसका हिस्सा बना दिया गया? नरक में जाएगा, पाप लगेगा, ये क्या हो गया? ये धर्म हो गया। तो अभी मैंने दो उदाहरण दिए, एक कानून की दंड का भागी होगा, इसमें भी आपको नैतिकता की रक्षा दिखाई दे रही कि नैतिकता का पालन किया जाना चाहिए क्योंकि वो समाज से जुड़ा हुआ तत्व है। और दूसरा मैंने आपको दिखाया कि पाप लगेगा, अगले जन्म में उसे भोगना पड़ेगा, ये धर्म का हिस्सा हो गया। नर्क में जाएगा, धर्म का हिस्सा हो गया। तो धर्म और विधि, इन दोनों का जन्म क्यों हुआ है, कहां से हुआ है, अब आप इस पर बड़े आराम से विचार कर सकते हैं। तो मित्रों, इसके बारे में अभी मैं इतनी ही बात करना चाहूंगा क्योंकि वक्त मुझे इस बात की अनुमति नहीं दे रहा है। और जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आपको काफी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें कुछ इतवार की भी क्लिपिंग्स हैं पिछले दिनों के, वो आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। तो सबसे पहले तो मैं उत्कर्षदीप, जो पटना बिहार से हैं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ऑडियो के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया और उनके पेरेंट्स अब इसे लगातार सुन रहे हैं, इसे एंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष। और अभिषेक गुप्ता का भी मेल आया है जिसमें उन्होंने इसकी परमिशन मांगी है कि इसको मैं प्रमोट करना चाहता हूं। अभिषेक, नेकी और पूछ नहीं, आप बिल्कुल, आपको परमिशन है, कोई रिटेन परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई ओरल परमिशन की जरूरत नहीं है। एक अच्छा काम आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आपकी इस भावना का, इस इच्छा का सम्मान करना चाहूंगा और सच पूछे तो अभिनंदन करना चाहूंगा। नरेंद्र कुमार का मेल है जिसमें उन्होंने अपने दोस्तों को बताया है और उनके दोस्तों ने afeis.com सुनना शुरू कर दिया है। और इसी तरह का मेल हर्षिता गुप्ता का उन्नाव से है और उन्होंने भी यही बात लिखी है कि वो इसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। तो हर्षिता और नरेंद्र, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: विकास केशरी, मयंक निगम, प्रदीप चंद्रवंशी, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से, अनुपमा शुक्ला बहराइच उत्तर प्रदेश से, सुनील लांडगे इंदौर मध्य प्रदेश से, बबलू कुमार धीरज कुमार श्रीवास्तव पूर्वी चंपारण बिहार से, मोहम्मद आबिद खगड़िया बिहार से, परमजीत मिश्रा लुधियाना पंजाब से, अमर मंडल कल्याणी वेस्ट बंगाल से, शत्रुघ्न सोनी पन्ना मध्य प्रदेश से, रजनी बाला नवीन रोहिल्ला हिसार हरियाणा से और कृष्णानंद कुशवाहा, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।